ధ్యానంజనసలాకయ చక్షురోనువితం తేన తస్మై శ్రీగురవే పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో మహాబదన్నాయ కృష్ణప్రేమాయ కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరస్తుతి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తే. సప్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి ప్రణమామి హరి. హా దేవీ కాకు భరగతగతయాచ జాతే నిపత్త భోగి ఆశా ప్రసాదమబుధస్త జనశ్రుతుస్య గంధర్వికేతవ గణీ అంగశ్యామలిం శటాభిరభితో మందేకసేందీవరం జర్జని జాగృతిగరోతిసంబర వృందారణ్యనివాసినం హృదిలసద్దామాభిరామోదరం రాధా సందనివేశితో జలగులం యం ప్రాభ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం పుత్రేపి తన్మయతయా సర్వోభిమేదు తం సవైవాస్మి సవైవాస్మి న జీవామి త్వయా వినా ఇతి విజ్ఞాయ రాధే తన్మయ మామ. సర్వ ఆత్మని విష్ణు వైజయంత జీవ పుష్పఫలాధ్య ప్రణతభార పిటపా మధుధార ప్రేమహరితనము వపృష్ణ. ఇస్ శ్లోక సనాతన గోస్వామి కి వ్యాఖ్య మే కర్ రహా థా. गोपियां भाव में आविष्ट होकर के सरलताओं का वर्णन कर रही हैं, अर्थात अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं उनके बहाने. अपने प्रियतम कृष्ण को प्राण को भी प्रियतम के रूप में अपने हृदय में गोपन कर रही हैं, छिपा रही हैं, किंतु प्रेम से विवश होकर के व्यक्त हो जाती है बातें उनकी, प्रेम की बातें, और उसी को वो लताओं और वृक्षों के माध्यम से प्रकट कर रही हैं. वनलता सर्व आत्मनि विष्णु व्यंजन. करें हैं कि वृंदावन के सरुलता का देखो प्रेम तो कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम. वो कृष्ण को अपने अंदर में छिपाना चाहती हैं, सरु छिपाना चाहते हैं और लताएं छिपाना चाहती हैं. इनका यह प्रेम भाव अपने आप प्रकट हो जाता है. उसी को कह रही हैं लताओं में जो फूल लगे हुए हैं, और वृक्षों में जो फल लगे हुए हैं। करें जैसे ये प्रेम को छिपाना चाहती थी लताएं और पेड़, किंतु दोनों में वो उसके फल फूल निकल आए, फूल भी निकल आ गए और फल। ये क्या चीज है इसको बतलाने के लिए पहले कहते हैं कि लताओं का प्रेम पेड़ों से बढ़कर है, वृक्षों से बढ़कर है। पेड़ पति हैं, लताएं पत्नी हैं, किंतु पत्नियों का प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत अधिक है, स्वाभाविक अधिक। तो वो इस भाव को मानो प्रकट कर रही हैं, ये कृष्ण के जो भक्त हैं मानो पुष्प के स्वरूप, भक्त फूल के स्वरूप। भक्त सब पुष्प तुल्य रूप, लताओं का रूप भक्तों के रूप के अनुसार, जैसे भक्तों का अत्यंत सुंदर रूप ब्रजवासियों का, और जाति माने गोप जाति, और साधारण भक्तों का जो रूप जाति और ऐश्वर्य आदि धन के द्वारा, ये सब क्या है, पुष्प सदृश है। भक्तों का सौंदर्य, उनके भाव, उनकी जाति और ऐश्वर्य उनका धन है, और फल क्या है, पुत्र आदि। जैसे भक्त रूप जाति ऐश्वर्य धन और फल पुत्र इत्यादि के द्वारा परिवेषित होकर के कृष्ण की सेवा करते हैं भक्त लोग, जैसे अर्जुन उनका रूप द्रौपदी, अभिमन्यु पांचों पांडव, कुंती माँ, ये सब लेकर के और अपने धन ऐश्वर्य के द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं। ऐसे भक्त लोग अपने रूप से, अपने गुण से, अपने भावों से, अपने पुत्रों से, धन से, सब प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, मानो ये लताएं और वृक्ष भी उसी प्रकार से इनकी सेवा करते हैं। लताओं का रूप कैसा, बेली चमेली की लताएं और उसमें फूल खिले हुए हैं, यह इनका सौंदर्य है, यही इनका धन है, यही इनका रोमांच है और यही इनका गंध है, ये सब कृष्ण को सेवा में लगा करके प्रमत्त हो उठती है, रोमांचित। और कभी पेड़ों का उनका जो फल है मधुधारा, इसके द्वारा कृष्ण की वो सेवा करते हैं। अथवा वेद की शाखा लो, ये शाखाएं क्या है, पेड़ों की और लताओं की जो शाखाएं हैं ये वेद की शाखा की तरह आती है। वेद की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिसमें 1008 शाखाएं प्रधान होती हैं, उसमें शाखाओं में गोपाल तापनी इत्यादि भी प्रधान है। तो उसमें उनके जो सुंदर सुंदर वाक्य वेदों के होते हैं, मधुपुष्पित वाक्य, कृष्ण का नाम करने से सारे प्रकार के शुभ उदित हो जाते हैं और शुभ दूर हो जाते हैं। कृष्ण की भक्ति करने से जीवन सार्थक हो जाता है, उनको जन्म लेना नहीं पड़ता, चिरकाल के लिए आनंद में वो लोग डूब जाते हैं। ये कैसे, ये फूल हैं, ये जितने वाक्य उनके हैं मानो ये फूल हैं। और ऐहिक और उनके द्वारा जो क्रियाएं हैं, आचरण है भक्ति की क्रिया या कर्म कांड की का जो आचरण है, ये सब फूल है। और फल क्या है? ऐहिक और पारस्परिक। ऐहिक माने लौकिक और पारलौकिक। जितने भोग सुख है जो उनको मिलते हैं, ये मानो फल है। इनके द्वारा, फल और फूलों के द्वारा अत्यंत विनम्र होना, लज्जा इत्यादि होना, ये गुण उसमें होते हैं। इस तरह से उनकी शाखाएं इनसे भरी पड़ी हैं, फल और फूलों से, ऐहिक और पारलौकिक, फल और फूल से। फूल क्या है अभी बतलाया? भक्त रूप ने शास्त्रों के वाक्य बदन बच्चा, जैसे कोई भी एक जो कृष्ण भक्ति से ही सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्त जय अहेतु क्या प्रतिहता जयात्मा सम। भागवत की कथा सुनने से तत्क्षणात् हृदय अवरुद्धते, तत्क्षणात् महामुनि कृते ये सभी पुष्प हैं, ये सब पुष्प हैं। वैसे वेदों के कर्मकांड के भी पुष्प हैं, जो चातुर्मास जब का पालन करता है उसकी सब प्रकार की सिद्धियां हो जाती है। ऐसे कर्मकांड में भी है, ऐसे भक्ति शास्त्र में भी है। ये वेदों के ये सब वचन पुष्प हैं और उनके द्वारा आचरित होने पर जो फल हैं जो मिलते हैं, ऐहिक और पारलौकिक, ये फल है, फल हैं। ये क्या चीज है, ये क्यों है? किसी को रोमांच हो जाए, इसमें आंखों में आंसू आ जाए, प्रेम भरे आंसू आ जाए, तो इसको हर्ष रोमांच इत्यादि हो जाती है। ये किससे होता है? भीतर में कुछ हो रहा है, कोई चीज क्रियावती हो रही है। वो क्या है? भीतर में विष्णु, विष्णु माने कृष्ण को आलिंगन जनित, मिलन जनित, उनकी सेवा जनित जो सुख और अष्ट सात्विक जो विकास, ये हो, अन्यथा नहीं होता। किंतु उनको ये छिपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं उस भाव को, किंतु वो ढकता नहीं, तो उसका हो जाता है तो फल और फूल दोनों उसमें और आ जाते हैं। फूल भी आ जाता है, फल भी आ जाता है, वो ढक नहीं पाते। इसलिए दूसरे लोग जो रसिक हैं, भावुक हैं, उन चीजों को समझ लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है, फल फूल क्यों लग रहे हैं। ये कह रही है गोपियां लताओं और वृक्षों को देख करके, किंतु है कहां? ये गोपियों में ही। मातृ ज्यार ने कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है, उस प्रेम को मातृ ज्यारवत छिपाना चाहिए। किसी को पता नहीं लगने देना चाहती कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है, हम उनसे मिली हैं, यह नहीं बतलाना चाहिए। किंतु प्रकट हो जाता है कैसे? वो छिप नहीं सकता, कृष्ण के हृदय में लेने से ही उनको रोमांच, कंप, आंसू इत्यादि फल फूलों से वो भर जाती हैं। उसी को वो करें, इनके अंदर में तो कृष्ण मिलन हो रहा है लताओं में और पुष्पों, फलों में, पेड़ों में, किंतु ये छिपाना चाहते हैं, किंतु वो छिपता नहीं, फल और फूलों से ये भर जाते हैं और अपनी शाखाओं को नीचे नम्र करके, ये विनम्रता गुण आया, विनम्रता गुण से वो झुक करके कृष्ण के चरणों में उपहार के रूप में अपने को, हृदय को वो दे देती है। मूल का ईव है, व्यंजयंत ईव, ईव माने भांति। किसके भांति ये नहीं लिखा, अपने भांति कह रही हैं या प्रेमी भक्तों की भांति ये इनको व्यक्त कर रही हैं, उनको दिखला रही हैं, किंतु है यु अपने लिए, गोपियों के लिए। ये शब्द का प्रयोग सूचित हो रहा है कि परम गोप्य हेतु, कृष्ण परम गोप्य हैं, विष्णु को स्वयं वे प्रकाश नहीं करने पर भी कौन ये गोपियां, गुप धातु से ये गोपी बनी, अपने कृष्ण को, अपने प्रियतम कृष्ण को, उनके प्रति प्रेम को वो छिपाना चाहती हैं, इसलिए उनका नाम है गोपी। नहीं करने पर भी प्रेम के परवश होकर के वो स्वयं ही, जैसे कोई कृष्ण का भजन कर रहा है या कर रही है, कृष्ण का चिंतन करते 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 कृष्ण का कोई भाव उदित हुआ मूर्छित अवस्था में भी, या रोग में भी मूर्छित हो गई हैं, किंतु वो भाव प्रकट होता है। आज हमने कृष्ण को देखा, आज हमने कृष्ण से देखा, उसे भेंट हुई इत्यादि। अभी सुना जे कोई लड़की यहाँ से दिल्ली गई, दिल्ली की, और उसने वो बीमार, उसको 104.5 डिग्री बुखार, करेजी से आज में वहाँ गई सेवा कुंज में, कहाँ गई, और वहाँ पर कृष्ण मिले, बस कृष्ण मिले, कृष्ण मिले, ये रथ लगा रहे हैं पागल। हमको अभी टेलीफोन से कहा, तो मैंने कहा जैसे ठीक है कह देना, जैसे हाँ मिले हैं, महाराज जी ने कहा मिल गए हैं, वो कृष्ण ने हमको बतलाया जो हम उससे मिले, इसलिए चिंता करने जल्दी से इसको कहा आश्वासन दे, वो जल्दी से ठीक। उसी तरह से जब इन तरु और लताओं की ये दशा है, तो उन गोपियों की मुरली की ध्वनि और कृष्ण के रूप को दर्शन करके क्या अवस्था होती होगी। किंतु पहले की भांति ब्रज देवियां अपने दुर्भाग्य को कोसती हैं, धिक्कार है हमें, किंतु इसके द्वारा ये मत समझो कि इसमें दुख उनको हो रहा है। दिवा भाग में वो कृष्ण से नहीं मिलती, नहीं मिलती, और दो चार पांच दस बीस मिल करके अपने समझाती और कृष्ण के इन विषयों की चर्चा करती हैं, रूप और बंसी ध्वनि की चर्चा कर रही हैं, और अपने को हतभागा इत्यादि कहती हैं। किंतु इसे मत सोचो जिसमें उनको दुख की प्रतीति होती है, वो बिरह ही आनंदमय है। इसलिए अपने अभाग्य स्वरूप को वो दुख नहीं कर रही, बाकी जो कृष्ण से मिली नहीं इत्यादि जो दुख प्रकाश कर रही हैं। पेड़ और लता तो अपनी भुजाओं को लेकर के पुष्प का हार और कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, उनके स्पर्श का आनंद ले रहे हैं, हमको नहीं हो रहा। ये अनुभव उस समय कर करके दुखित हो रहे हैं, किंतु ये मत समझो कि ये सचमुच में ये दुख है, नहीं करेंगे तो एक सेकंड भी नहीं बचेंगी। उसके चिंतन में जो आनंद है, ये आनंद को नहीं बतला रहे हैं, किंतु वो दुखी कर रही हैं, तभी ये दुख भी सब जानो परानंद सुख। उसको बड़ा दुख परमानंद में है ये, नहीं तो चिंतन क्यों करती। इसलिए कि इस अध्याय के अंत में वो बोलेंगे एवं ब्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीला अनुगायति रेमे रेहत सु तन्मनस्का महोदय। ब्रज देवियां, ब्रज देवियों का चित्त मन कृष्ण में अर्पित था, इसलिए वे इस गीत में ये जो गान कर रही हैं, परमे अपने को दुखी, हिरणियों को परम सुखी, मेघों को परम सुखी, परम सौभाग्यवान मना रही हैं, मोरों को, कोयलों को, गायों को और अपने को धिक्कार दे रही हैं। इसमें ये मत सोचो जैसे वो बड़ी दुखी हैं, खबरदार। या गोपियों का भी परमानंद का गीत है, किंतु उसमें उनको कैसी दुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति भी होती है, किंतु उनका वह सारा दुख और विरह सभी कुछ आनंदमय है, जड़ीय दुख सुख नहीं है। दिन में कृष्ण से वो मिलती नहीं, किंतु विरह में उनका मिलन होता है। सारे दिन उनकी प्रतीक्षा करती हैं, उन्हीं का गुणगान करते हुए उन्हीं से मिलती हैं। दिन में नहीं मिलती, मतलब क्या, सब मिलती हैं कभी, इसलिए उनका रात्रि काल बहुत परमानंदमय सुखमय होता है। और इस विरह में भी उनका परमानंद, ये सब उद्गार के द्वारा कृष्ण की लीला कथाओं के द्वारा वो आनंदित रहती है। इसलिए वो इस रूप में समझो ये कृष्ण का लीला गान करके वो सुखी हो रही, नहीं तो वो जीवित नहीं रह सकती। तात्पर्य यह कि सनातन गोस्वामी कह रहे हैं विरह दुख के सागर में भी वे ब्रजांगनाएं कृष्ण लीला का गान करती करते 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 कृष्ण में तन्मय हो जाती हैं और उनसे मिलन का सुख अपने आप उनको मिलता है। क्योंकि उनके मन का संकल्प और चित्त की जो गति है कहाँ है, कृष्ण में। चित्त की गति सब समय स्वाभाविक रूप में कृष्ण की तरफ में प्रभावित रहती है, वो कृष्ण। इसलिए महादेवियां कृष्ण के लीला का गान कर दिन में भी परम सुखी रहती हैं। यदि ये लीला का गान नहीं करती न जाने क्या उनकी स्थिति हो। इसलिए वैष्णव लोग भी जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं हरिनाम करते समय में, लीला चिंतन करते समय में, भगवान का स्मरण करते समय, भगवान की सेवा करते समय, उन्हीं गोपियों के इन गानों का या और गोपियों के और जो चरित्र है गान करते हैं, वो उसी मिलन सुख का आनंद उपभोग करते हैं और ऊपर से बहुत विरही दिखलाई पड़ती है। ये उत्तम भागवतों के तो यह रागानुगा में ही होगा संभव, वैदिक भक्ति में यह शक्ति। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में भी बतलाया गया है 10:35:1 वह जुगल गीत के प्रारंभ में गोप्य कृष्ण जाते के बाद क्या हो रहा है, तमनु दुपक्षे तथा कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्नु दुखेन वासरान। गोपियों के का निशा भाग मैंने रात कृष्ण के सहित विलास में परम सुख के साथ में अतिवाहित होता था, किंतु दिव्या भाग में जब कृष्ण वन में गमन करते गोचारण करते करते सखाओं के साथ में, तो उनका चित्त भी उस शरीर को छोड़ करके उनको और वन में कृष्ण के साथ साथ में उनका चित्त चला जाता है। इसलिए वे कृष्ण के नानाविध लीलाओं का गान कर अत्यंत कष्ट से दिन व्यतीत करती। ये तो गीता इस श्लोक का ऊपरी अर्थ, किंतु भीतरी अर्थ ये निन्नु दुखेन बासरान। ऊपर से तो लगता है कि ये दुख के लिए कह रही हैं, किंतु दुख के लिए नहीं कर रही है। कैसे, इसको सनातन गोस्वामी व्याख्या के द्वारा बतला रहे हैं। यहां दुख पद का विरह पीड़ा मय दुख दीन और सुख से अतिवाहित, दिन भी सुख के साथ में अतिवाहित किया था। विरह का जो दिन है, जो कृष्ण से मिलने नहीं, कृष्ण गोचारण करने के लिए वन में चले गए, वो कि अपने घर में बैठी हुई है, यह तो दुख की बात है विरह का दिन। किंतु यह विरह का दिन भी सुख से अतिवाहित करती थी। कैसे, दस पांच अपने से जाती है मिल बैठ करके कृष्ण की उन लीलाओं का की भावना करके देख करके मानो आंख से देख रही हैं, कृष्ण से उनका मिलन हो रहा है और बड़े सुख से। पता नहीं लगता था कि ये दिन कब चला गया। शाम हो गई, कृष्ण की बंसी बजी, गायों का हम्बारा हुआ, धूल आकाश में उड़ी और फिर वो गई देखी कृष्ण बंसी आ रहे, इसलिए उनको प्रतीति नहीं हुई लीलाओं के गान से। इस तरह से भक्तों के चरित्र को देखो, रूप सनातन इत्यादि गोस्वामी का देखो। कालावसानी कृतौ निद्रा हार विहार कार्य विजितौ चातंत्र दीनौ तुजौ राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरमान देव सम्मोहितौ वंदे रूप सनातन। थोड़ा सा भी तो अनुगमन करने की चेष्टा करो, थोड़ा सा भी अनुगमन करो। कैसे रूप गोस्वामी जी भजन करते इसमें है ना, संख्या पूर्वक संख्या पूर्वक नाम गान नतवी काल अवसान। सब अवसान काल कैसे व्यतीत करते थे, संख्या पूर्वक नाम गान। गान क्या, यही सब गान रूप सनातन मिलते और 10-12 घंटा दिन का वैसे ही कट जाता, गोपियों के कथाओं को गान करने में लग जाता, प्रणाम करने में, चिंतन करने में, हरिनाम संख्या पूर्वक करने में। उनका एक समय भी, एक मिनट समय भी हम लोगों जैसा नहीं दी थी। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये लोक संग्रह है। लोक संग्रह समझते हैं, लोक संग्रह, किंतु सारा जीवन लोक संग्रह नहीं है करना चाहिए। लोक संग्रह में जीवन को विचार दिया, भजन करना, भजन करते करते लोक संग्रह केवल लोगों को भगवान की भक्ति तरफ में लाने के लिए, अपने किसी स्वास्थ्य के लिए नहीं, तब तो वो ठीक है। ये हम लोगों का समाज, हम इस तरह से सृष्टि करते हैं कि इन कथाओं को सुनने वाले भी कुछ हों और जिसको परस्पर सुन और गा सके, इसलिए ऐसे समाज की रचना के लिए हम लोग ये एक समाज प्रस्तुत करते हैं। नहीं तो नास्तिक लोग इन कथाओं को सुनेंगे, उनसे तो कहो कि बीड़ी सिगरेट मत पियो, हिंसा मत करो, द्वेष मत करो, समय बर्बाद मत करो, लौकिक व्यवहार में मत रमो, स्त्री पुत्र धन परिवार के साथ में आसक्त मत रहो, यही कहेंगे बस। किंतु रूप सनातन जैसे लोगों को, उनके अनुगत जनों को इसके लिए भी समय नहीं है, दिन रात ऐसी कथाओं में वो डूबे रहेंगे, जो आएगा उसको भी उसमें डुबा देंगे। इसलिए यहां पर दुख जैसा प्रतीत होता है। कुंती के पति मर गए, पांचों बेटे उनके हैं, धृतराष्ट्र के यहाँ रहती हैं, कभी किसी को विष देता है दुर्योधन, कभी कुछ, कभी ला के गृह में उनको जला देता है, कभी जुए में उनकी स्थिति तक को हर लेता है। उसमें कुंती जी कैसी सुखी होंगी, जिसमें कुंती और सुभद्रा और द्रौपदी और पांचों पांडव का रहते, अभिमन्यु को मारा जाता है चक्रव्यूह में, उनको कैसा बीत रहा होगा। तो कुंती जी कृष्ण से कहती हैं, अरे वसुदेव जी से कहते हैं, भैया हमें को भूल गए, जब द्रौपदी को नग्न करके सभा में नंगा किया जा रहा था, अपमान किया जा रहा था, पांडवों को राज्य से निकाला जा रहा था, इनको बर्णावत नगर में जलाया जा रहा था, उस समय तुम देखते नहीं थे क्या, तुम तो अंतर्जामी हो, तुम्हारा बेटा अंतर्जामी, तुमने हमें याद नहीं की। उधर में वसुदेव जी क्या कहते हैं, यही तो काल की गति है, तुम जानती नहीं कि उस समय हमारे छाती पर दाल डाला जा रहा था, हमारे 6 पुत्रों को कंस ने वध कर दिया हमारे आंखों के सामने, हमारा सातवां बेटा है, गर्भ से उसे हरण कर लिया गया, और आठवां पुत्र को होते हैं कितने कितना दुख हमें आया, अभी तक जेल में हम लोग पड़े थे, ये दुख सुख पर हम लोगों का हाथ नहीं। अच्छा, कुंती का यह कहना दुख है क्या, क्या सुख का है? शस्त्र में तीन सुन के साथ में रहते हैं, इसे कहते हैं कि हमारे ऊपर लाख विपत्तियां आए, सुख ना आए, जैसे कि तुम सब समय हमारे पास में रहो। आज यदि कृष्ण द्वारका जाते हैं तो ये लोग विपत्ति की सृष्टि करते हैं, कुंती जी, द्रौपदी, सुभद्रा, पांचों पांडव मिल करके कोई ऐसा उपाय करते हैं, दुख को जानबूझ करके बुलाते हैं, सृष्टि कर लेते हैं, जानबूझ करके जुआ खेल लेते हैं, ऐसा जैसे कृष्ण आ जाए। इसलिए उनका वह दुख दुख है या सुख, जब कृष्ण उनके ऊपर में छत्र छाया की भांति रहते हैं, इसलिए उनका दुख दुख नहीं। जब इन्हीं का नहीं है तो गोपियों की बात क्या? इसलिए कृष्ण के वन में जाने पर कृष्ण की लीला में वो चिंतन गायन में चिंतन में ऐसे तदात्म हो जाती हैं कि वो दुख भी क्षण मात्र में चला जाता है। इसलिए ऊपर से दिखने वाले कृष्ण के विरह में गोपियों के दिवा भाग भी रात्रि की भांति ही मिलन पूर्ण और सुखमय बोध होता है, उसी में वो सब भूल जाते हैं। इसे दुखमय जीवन भी बड़े सुख से अतिवाहित किया था, ऐसा समझना होगा। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा और वो रो रही हैं, हाथों को ऊपर उठा करके आंख बंद करके, अब तो लज्जा गई, और उस समय कृष्ण जब उनके शरीर में प्रवेश किए होंगे वस्त्र के रूप में, उनको उसका स्पर्श का आनंद मिला होगा कि नहीं, ये व्यक्ति उसमें नहीं है, किंतु ये अनुभव है। इसी तरह से वैष्णव का दुख भी इसी प्रकार, दुख में भी भगवत मिलन जनित आनंद की प्राप्ति होती है। गोपियों का प्रेम परिपाक है, परिपाक माने क्या? पका हुआ है, परिपक्व, साधन नहीं है। परिपक्व कहते हैं पके हुए को, साधन का फल वो परिपक्व है। तो उनका प्रेम परिपाक स्वभाव, अतः सब समय उनका प्रेम उनका उनकी आत्मा में है, इसलिए उनको कहते हैं क्या? अनुरागात्मिक, अनुराग उनके हृदय में है, वह अनुराग अनुराग भाव महाभाव से ऊपर अवस्था तक चला गया है, जिसकी हम लोग इस अवस्था में कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो आसक्ति की परिकल्पना नहीं कर सकते, आसक्ति की नहीं कर सकते। आसक्ति में क्या स्थिति होती है, निष्ठा में ही क्या होती है। अभी थोड़ा सा दुख आ जाए बाहरी तो हम भक्ति को भी भूल जाएंगे, तिल मिला जाएंगे, भक्ति और भगवान दोनों को छोड़ देंगे संसारिक सुखों के लिए, और छोड़ ही रहे साधारण बातों के लिए। इसलिए प्रेम की परिपाक दशा के कारण उनका स्वभाव भी प्रेम है, इसलिए बाहरी दृष्टि से उस दृष्टि से प्रेम परिपाक की दृष्टि में वो समझ रही हैं कि अत्यंत कष्ट से जीवन यापन करती हैं, किंतु कृष्ण के साथ में विरह में भी जो मिलन होता है उनकी ललाओं कथाओं का जो गायन करती हैं, इसलिए उसको आनंद समझो, दुख मत समझो संसारी। उनका यह दुख दुख भी क्या है, प्रेम का विकार है। सच्चिदानंद में जो प्रेम है वो प्रेम का विकार है। कहते हैं कि वेणुनाद ऐसी है, वेणुनाद के समय से जब लताओं की ऐसी स्थिति हो जाती है, नए नए पत्र पुष्प और फलों में फल, पेड़ों में फल फल इत्यादि लग जाते हैं, मधु धारा उनसे गिरती है, तब ब्रज गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों का, उनको गिरा कैसे होगा, कैसे सज्ज होता जब इन्हीं को ऐसी दशा है। इसलिए समझो तो विरह में परमानंद है, इसलिए इसलिए उनका विरह भी परमानंद है। सर्वत्र शेष में श्रीधर स्वामी जी इसे श्लोक का वर्णन करते हैं। गोप्य वनम जाते समानुद्रुत चेतस, इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि वीरदशा भी सुख की अनुभूति में ही उनका सदा पर्यवसित था। गोपियों का जो कृष्ण के विरह में रहना, उनका गायन करना, रोना, यह सब कुछ सुख में ही पर्यवसित होता। इस प्रकार से जैसे गोपियां रो रही हैं, उनकी दशाएं हो रही हैं, उद्धव जी देख रहे हैं, कहते हे गोपियां तुम धन्य, नंद बाबा आपके समान और सौभाग्यवान और यशोदा जैसी कोई सौभाग्यवती नहीं, कृष्ण को बेटा मानकर के उनके दिल में इस प्रकार की इनकी अवस्था, ये तो दूसरे किसी के लिए संभव है। सुख समझ रहे हैं किंतु फिर उसी दुख के डर से भाग गए, मथुरा लौट गए। गोपियां नहीं गई। इस प्रकार से जंगनाओं का चित्त कृष्ण में अर्पित था। कृष्ण में यदि अर्पित था तो विरह कहां, जब कृष्ण के साथी में वन में जाती हैं, उनका चित्त जला जाता है और सब समय उनके मिलन जनित आनंद हो रहा है, तो विरह की संभावना। इसलिए तत्वदर्शी लोग तो इस प्रकार से समझेंगे जैसा सिद्धार्थ स्वामी जी कह रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या में उन्होंने कहा है कृष्ण जैसे परमानंद घन मूर्ति हैं, उनकी लीला भी परमानंद घन स्वरूप है। दोनों में, लीला में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कृष्ण नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। इस तरह से उनकी कथाओं में और कृष्ण में, कृष्ण की लीलाओं में और उनमें, कृष्ण के गुणों में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं, एक ही वस्तु है। किंतु ताई बोलिया कि क्या ऐसा होने से क्या ब्रजलाना है, उनके इस लीला को गायन करके विरह में सुखी होती थी, कभी नहीं। सनातन जी करें क्यों, सर्वदा उनका प्रेम सबसे में प्रथम चीज है। नाना प्रकार के भाव आते हैं, कभी विरह, कभी मिलन, कभी कुछ, कभी कुछ, नए नए प्रेम उसमें आविर्भूत होते हैं। प्रेम की लहरियां एक दूसरे पर आती हैं, कभी एक दूसरे को ढक लेती हैं, कभी एक दूसरे को और वर्धित कर देती हैं, कभी संवर्धन करती हैं, कभी संवर्धन करती हैं उस प्रेम को नए नए रूप से, उसमें भाव संधि, भाव सबल, भाव भाव इत्यादि। उस श्लोक में महर शब्द से भद्रा और मंगला नामनी गोपियों, गोपियां की भांति भद्रा और मंगला की भांति विपरीत प्रेम लक्षण, विपरीत लक्षण से प्रेम और उस प्रेम के उदय से जो गोपी में, ये गोपी थे, अर्थात भद्रा जो है ये विरुद्ध पक्ष के से संबंधित चंद्रावली की तरफ, उनका उनका क्या है, क्या पक्ष विपक्ष असुज, उनकी सूज पक्ष की है, इसलिए उनके सुख दुख में सुखी रहती हैं। कृष्ण के पास गोपियों का, इन राधा इत्यादि का मिलन होने से जैसे चंद्रा को दुख होता है, उसे भी अधिक दुख होता है इनको, उनकी सुख दर, इसलिए जाकर के उनसे चंद्र, ये दोनों इनका विपरीत प्रेम है, किंतु विपरीत होने से भी क्या इसमें दुख है, न सुख है। उनमें भी जो प्रेम का उदय, वो भी प्रेम का ही विकार है। नाना तरह से प्रेम उदित होता है, नाना प्रकार की भावना से प्रेम रसिका अर्थात प्रेमाग्नि दग्धा गोपियों का सुख लेस भी वहां देर असंभावना करा जाए कि। इसलिए उस समय गोपियों का जो दुख है उसको सुख कहाँ उसमें है, इसकी समाना नहीं की जा सकती। ये कर रहे हैं स्वपक्ष की भावना, मंगलार उनको लिया विपक्ष का और ये लेते हैं स्वपक्ष। इसलिए राधा के विरह में ये कैसे कह सकते हैं कि राधा जी को उस विरह में भी कृष्ण का गान करने से लीला और वो सुखी रहती हैं, आनंदित होती हैं, ये मत समझो। ये उनका अपना विचार किन में भूमिका में, उस वृंदावन की भूमिका में पहले तटस्थर के रूप में बतलाया, अब अंतरंग रूप में इसको बतला रहे हैं। हाँ, गोपियों को दुख होता है, नहीं दुखा तब रोएंगी कैसे। इस रूप में तरह तरह के ये अर्थ प्रेम कामहा आविर्भाव और उसका उत्तरोत्तर वर्धन में वैशिष्ट है। प्रेम स्नेह मान प्रणय प्रेम ही है किंतु एक नहीं है, इनमें वैशिष्ट वर्तमान होता है। इसलिए प्रेम में मिलन और विरह दोनों एक तात्पर्य पर होने पर भी एक नहीं है, उनमें भी वैशिष्ट जरूर आना चाहिए। विरह में भी सुख दुख होता है, मिलन में सुख होता है, विरह में भी सुख ही होता है, तो फिर वैशिष्ट क्या रहा। इसलिए वहां का दुख यद्यपि आनंदमय आनंद का ही विकार है, बात ठीक है, तभी वहां पर इसकी अनुभूति होती है। तभी कृष्ण का लीला गान करते हुए उनके दुख इसी प्रकार से कट जाते बन जाते। कोई है, आ जाइए।